आयुष की अचानक तबीयत खराब होने पर आहान उसे लेकर तनु के पास पहुंचा। तनु एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में काम करती थी। आहान ने रास्ते में ही आयुष के लिए सारे अरेंजमेंट करने के लिए कह दिया था, इसलिए उनके हॉस्पिटल पहुंचते ही आयुष के सारे टेस्ट होने शुरू हो गए थे। पूरे टाइम में आहान उसके साथ था, क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ था। सारे टेस्ट हो जाने के बाद आयुष को रिलैक्स करने के लिए तनु ने उसे कुछ मेडिसिन देकर सुला दिया, और अब वो आहान के साथ अपने केबिन में थी। तनु ने आहान से पूछा, अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों भाई ही सीवियर मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। ऐसा अक्सर उस मामले में होता है जहां फैमिली में किसी को ये बीमारी हो, जेनेटिक डिजीज़, शायद ये एक से दूसरी जेनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ हो। मिस्टर ओबेरॉय या तुम्हारी मॉम, दोनों में से किसी की फैमिली में इस तरह की कोई बीमारी थी क्या? वैसे तो तनु आहान की अच्छी फ्रेंड थी, और अब तक उसे यही लगता था कि आहान की बीमारी के पीछे का कारण उसका बुरा बचपन और कुछ कड़वी यादें हैं। लेकिन आज आयुष की हालत देखने के बाद वो उनकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछने के लिए मजबूर हो गईं। आहान इस बारे में सोचते हुए बोला, ओके, मैं बचपन में काफ़ी बार अपने नानू के यहाँ गया हूँ और दादा दादी के पास भी, वो सब नॉर्मल थे। और जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम और मिस्टर ओबेरॉय के दादा दादी भी जिंदा थे, उन्हें भी किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी। उम्र ज़्यादा होने की वजह से उन सबकी नेचुरल डेथ हुई थी। इसका मतलब तुम्हारी बीमारी जेनेटिक नहीं है, तुम्हारे एक्सेसिव एंगर डिसऑर्डर का कारण मुझे समझ आता है, लेकिन आयुष की बीमारी के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या दिल ही दिल में वो भी अकेला महसूस करता था जैसे तुम? तनु ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। हो सकता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, यह आयुष ही बता सकता है, आहान ने सिर हिलाकर जवाब दिया। आहान काफ़ी टाइम पहले ही ओबेरॉय मेंशन छोड़ चुका था, ऊपर से पिछले 5 साल से आयुष से मिस्टर ओबेरॉय के अलावा और कोई टच में नहीं था। एक बार फिर विजय ओबेरॉय ने आहान को गुस्सा करने की वजह दे दी थी। आहान के चेहरे के एक्सपेक्टेशन बिगड़ते देखकर तनु जल्दी से बोली, तुमने आज अपनी मेडिसिन ली? नहीं, आहान ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डॉल पूरा दिन मेरे साथ थी, उसके साथ रहते हुए मुझे गुस्सा नहीं आता है। अगर आता भी है तो बहुत कम टाइम में वो समझ गई है कि मेरा गुस्सा कैसे शांत किया जा सकता है। आर यू सीरियस आहान, तुमने अपनी मेडिसिन नहीं ली? तुम कैसे मिस कर सकते हो? चाहत तुम्हारा गुस्सा शांत ज़रूर कर सकती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दवाइयाँ मिस करने के चक्कर में तुम अपना गुस्सा उस पर बुरी तरह निकालो, जैसा उस रात हुआ था, तनु ने हल्के गुस्से में कहा। फिर वो उठ कर गई और आहान की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से बॉक्स में रखी मेडिसिन निकालकर उसे दी। आहान को तनु की मेडिसिन लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे वो दवाइयाँ लेनी पड़ी। ठीक से मेडिसिन नहीं लेने की वजह से ही उसकी बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। आहान के मेडिसिन लेते ही तनु ने पूछा, तुम अपनी मॉम से मिलने गए, अब उनकी हालत कैसी है? गया नहीं और जाने की हिम्मत भी नहीं है, मैं उन्हें उस हाल में नहीं देखना चाहता, अगर देखा तो तुम जानती हो कि मेरा गुस्सा किस हद तक बढ़ जाता है। मैंने सिक्योरिटी का इंतज़ाम काफ़ी हद तक कर रखा है और डॉक्टर से हर घंटे अपडेट लेता रहता हूँ, उन्हें होश आते ही मैं उनसे मिलने चला जाऊँगा, आहान ने बताया। वो काफ़ी टाइम से चाहत से दूर था, इसलिए उसे अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही आहान आइंज को छोड़कर भी नहीं जा सकता था। आहान के चेहरे पर बेचैनी देखकर तनु सब समझ गई। उसने कहा, तुम चाहो तो कुछ देर के लिए घर जा सकते हो, आयुष को होश आने में टाइम लगेगा, हमें उसे एडमिट लेना पड़ेगा, शाम तक और भी टेस्ट होंगे, सबकी रिपोर्ट आने के बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, और डोंट वरी, मैं उसका ध्यान अच्छे से रखूंगी, पता है तनु, और मुझे तुम पर यकीन भी है, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को पता ना चले। मैं आयुष को यहाँ लेकर आया था तब मैंने ड्राइवर की गाड़ी यूज़ की थी, अगर मीडिया को पता चला तो बेवजह तमाशा हो जाएगा, आहान ने कहा, और फिर आयुष को तनु के भरोसे छोड़कर वो वहाँ से निकल गया। आहान गाड़ी में बैठा ही था कि तभी उसके पास उसके मैनेजर का कॉल आया, जिसने मिस्टर विजय ओबेरॉय की उसके ऑफिस में होने की बात कही। आहान समझ गया था कि विजय ओबेरॉय उसके पास क्यों आया होगा, उसके फेस पर एविल स्माइल थी, और अब आहान घर जाने के बजाय अपनी कंपनी जा रहा था। देखना तो बनता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से दूर होने के बाद तुम किस तरह तिलमिला रहे हो विजय ओबेरॉय, आहान ने केवल स्माइल के साथ कहा, और फिर जल्दी से अपनी गाड़ी कंपनी की तरफ बढ़ा ली। कुछ ही देर में आहान अपनी कंपनी पहुंच चुका था। जैसे ही आहान अपने केबिन में गया, विजय ओबेरॉय गुस्से में उसके पास आया और आहान की कॉलर पकड़ ली। वो उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोले, क्या किया है तुमने दामिनी के साथ, यू साइकोपैथ? एक तो पहले ही विजय ने आहान की कॉलर पकड़कर उसे गुस्सा दिला दिया था, ऊपर से उसने उसे साइकोपैथ भी कहा। आहान ने विजय ओबेरॉय के हाथ अपनी कॉलर से दूर किया और उन्हें दूर धकेलते हुए कहा, अपनी जुबान को लगाम दो, अभी तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन आगे बहुत कुछ हो सकता है। सुना है तुम बाप बनने वाले हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट किया, और साथ ही एक बच्चे की जिंदगी भी, तुम कभी एक अच्छे बाप नहीं बन सकते विजय ओबेरॉय। आहान की आंखों में अपने डैड के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। विजय को दामिनी की प्रेगनेंसी के बारे में आहान से ही पता चला था, अब तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। विजय ने आगे कहा, किसने कहा कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सकता, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा, उस बच्चे के लिए जो मेरे प्यार की निशानी है, तुम जैसे अनवांटेड चाइल्ड के लिए नहीं। चुपचाप दामिनी के बारे में सब कुछ बता दो, वरना कल शाम तक मीडिया को तुम्हारी सारी टेप्स पहुंच जाएगी, जहां तुम गुस्से में बेदर्दी से लोगों के साथ क्या कर रहे थे ये तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद होगा।
विजय की धमकी का आहान पर कोई असर नहीं हुआ। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोला, कल शाम तक का टाइम ज्यादा नहीं दे दिया विजय ओबेरॉय, इतने टाइम में तो किसी का अबॉर्शन भी किया जा सकता है और उसे जान से भी मारा जा सकता है। साइकोपैथ कहा था ना तुमने मुझे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक साइकोपैथ क्या कर सकता है। बोलते हुए आहान ने विजय की कॉलर पड़ी और गुस्से में कहा, तेरी वजह से आज मैं और मेरा भाई इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ तो तुझे भी देनी बनती है। तूने मुझे टाइम दिया था ना, अब मैं तुझे टाइम देता हूँ, अगले 2 घंटे तक किसी सेफ जगह पर पहुंच जा, वरना जहां मैं पहुंचाऊंगा वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। आहान पर भले ही विजय की धमकी का असर न हुआ हो, लेकिन विजय उसकी बातों से घबरा गया। वो अच्छे से जानता था कि आहान जो कह रहा था वो कर भी सकता था। यही वजह थी कि वो ज्यादातर आहान से दूर ही रहता था। विजय समझ गया था कि आहान से गुस्से में काम नहीं लिया जा सकता। उसने नरमी से बात करते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, तुम्हारी मॉम को डिवोर्स नहीं दिया, दामिनी से शादी नहीं की, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे आगे भी करते रहूंगा, पर प्लीज दामिनी को छोड़ दो, मेरे लिए ना सही अपने होने वाले भाई या बहन के लिए। तुम्हें इस तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए देखकर अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन तुम्हारा झूठा देखकर दया नहीं आ रही। क्या कहा तुमने, मेरी मॉम के साथ कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया होता तो वो हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी से लड़ नहीं रही होती। अब बहुत देर हो चुकी है विजय ओबेरॉय, 2 घंटे का टाइम है, देख लो क्या करना है, आहान ने जवाब दिया और फिर विजय का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने केबिन से बाहर निकाल दिया।
आहान ने उसके बाद निखिल को कॉल करके कहा, अगले 1 घंटे में ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के सारे शेयर्स आयुष ओबेरॉय के नाम हो जाने चाहिए, कहकर उसने कॉल कर दिया। आहान ने अब तक ओबेरॉय इंडस्ट्रीज को बख्श रखा था तो वो आयुष की वजह से था। उसके हिसाब से आयुष का उस कंपनी पर हक था और वो अपने छोटे भाई का हक नहीं जीना चाहता था। विजय से मिलने के बाद आहान का गुस्सा फिर से बढ़ गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, डॉल मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नो तुम मुझे बेहतर तरीके से संभाल सकती हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। उसके बाद आहान भी वहां से तुरंत अपने घर जाने के लिए निकल गया, जबकि चाहत अभी तक अपनी माँ के पास थी।